आकाशवाणी है। आइए सुनते हैं 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आकाशवाणी समाचार की एक विशेष परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे, पद्मश्री और माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉ यजदी इतालिया, पद्मश्री और खेल रत्न डॉ दीपा मलिक और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अरुण कृष्णमूर्ति। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार रवि पाराशर।
भारत ने 78वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास से मनाया। इस अवसर पर देशवासियों का जोश देखते ही बना। स्वतंत्रता दिवस पर आकाशवाणी द्वारा प्रस्तुत विशेष परिचर्चा में शामिल हैं भारत के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे, जाने माने माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉ यजदी मानेकशा इतालिया, जानी मानी एथलीट और दिव्यांगों के जीवन में उम्मीद की सुनहरी किरणें भरने वाली डॉ दीपा मलिक और मशहूर पर्यावरण एक्टिविस्ट अरुण कृष्णमूर्ति। आप सभी का आकाशवाणी की विशेष परिचर्चा में बहुत स्वागत है। जनरल एमएम नरवणे, विशेष परिचर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं। आपने बेहद शक्तिशाली भारतीय फौज की कमान संभाली है, कितना गौरवशाली अनुभव था आपके लिए?
इतने बड़ी फौज का कमान संभालना एक चुनौती होती है और गौरव की बात तो है ही, लेकिन हमें इससे खुशी होती है कि इतने होनहार ऑफिसर्स, जेसीओज और जवानों को लीड करने का मौका मिला और मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूं।
परिचर्चा में अब सवाल लेते हैं जाने माने माइक्रोबायोलॉजिस्ट पद्मश्री डॉ यजदी मानेकशा इतालिया जी से। डॉक्टर साहब, आप देश के जाने माने माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। भारत सरकार ने आपके काम के लिए आपको पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा है, इसे कितना गौरवशाली मानते हैं आप?
पद्मश्री दिया इसलिए मैं गौरवशाली तो हूँ, लेकिन आई एम मोर हैप्पी कि मेरे जो विचार थे सिकल सेल एनेमिया के पेशेंटों के बारे में कि उनके घर पे ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, जो गरीब है उनको सबको स्क्रीनिंग करना चाहिए और उनकी अच्छी तरह से देखभाल सरकार को करनी चाहिए, 1978 से मेरा ये विचार था। तो मैं पहले से ये सोच रहा था कि ये जो रोग है सिकल सेल एनेमिया वो आदिवासी लोग में है, वो अपना खुद का पैसा स्पेन करके कोई लेबोरेटरी में जाके खून की तपास करने वाला नहीं है और जहां तक उसकी खून की तपास नहीं होगी दैट पेशेंट इज गोइंग टू बी मिस डायग्नोस एंड मिस ट्रीटेड। और सरकार को मैं वही रजूआत करता रहा और उन्होंने जो ये काम हाथ में ले लिया और जो काम अभी चल रहा है उससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी है और साथ में ये पद्मश्री मिला है। फिर भी आई एम मोर हैप्पी विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम फॉर इंडिया।
और अब सवाल कर लेते हैं जानी मानी एथलीट और दिव्यांगों के हितों के लिए काम कर रही डॉक्टर दीपा मलिक जी से। दीपा जी, अहम सवाल दिव्यांग जनों को लेकर है कि अब उन्हें लेकर देश में क्या नजरिए में कोई बदलाव आया है और आगे आने वाले समय में इसमें और सुधार की कोई गुंजाइश देखते हैं आप?
ये बिल्कुल सही बात है, आज हम अपना आजादी का दिवस मना रहे हैं और सबको उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और इस उपलक्ष्य पे जो आपने मुझसे सवाल किया है, मुझे लगता है कि हाँ, वाकई ही हमें एक नकारात्मक मानसिकता से काफी हद तक आजादी मिली है और इसका परिणाम हम पॉलिसीज में भी देख रहे हैं, इसका हम अवेयरनेस सोशल मीडिया में भी देख रहे हैं। और अगर हम जनरल ट्रेंड देखें, चाहे हम बॉलीवुड में ट्रेंड देखें, चाहे हम एडवर्टाइजमेंट में ट्रेंड देखें, तो कहीं ना कहीं बहुत इंक्लूसिव एक अप्रोच आने लगी है। हाल ही में मुरलीकांत पेटकर जी की कहानी इतनी ब्लॉकबस्टर हिट रही है जिसकी चर्चाएं बहुत हुई हैं, इसका मतलब ऑडियंस ने ऐसी फिल्मों को पसंद किया है। और आप सरकार के कितने ही इनिशिएटिव देख लीजिए, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, टीबी मुक्त भारत, स्वच्छ भारत, हर जगह हम देख रहे हैं कि दिव्यांग व्यक्ति जो कुछ ना कुछ अपने जीवन में अलग हटकर कर रहे हैं उनको वहां पे रोल मॉडल्स बनाया जा रहा है, ब्रांड एम्बेसडर्स बनाया जा रहा है। मैं खुद भी ऐसे इनिशिएटिव्स में चुनी गई हूं। पॉलिसीज के हिसाब से देखें तो जहां पे 7 जो दिव्यांगता कहें, अभी आदरणीय मोदी जी ने तो नाम ही जब दिव्यांग दिया तो मानसिकता अपने आप ही बदल गई, क्योंकि कोई अपंग कहता था, कोई लाचार कहता था, हैंडीकैप कहा जाता था, लेकिन जब प्रधानमंत्री स्वयं हमारी एबिलिटीज को सराहते हैं और डिसेबिलिटीज के अबव उठकर जब आपको एक एम्पावरमेंट दृष्टि से देखा जाता है तो आपको दिव्यांग जैसे शब्द से सम्मानित किया जाता है। तो पॉलिसीज पहले सात ही दिव्यांगताओं को मान्यता देती थी, अब आइडेंटिफाई करके जो डिसेबिलिटी एक्ट को रिवाइज किया गया है उसमें 21 डिसेबिलिटीज को रिस्पेक्ट दी गई है और उसको अब डिसेबिलिटी एक्ट बनाया गया है, दैट इज राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। जब आप उनको बराबर का दर्जा देते हैं और एक सोशल सर्विस नहीं बल्कि एक्ट के तहत लेकर आते हैं तो ऑटोमेटिकली वो अपने हक की बात कर सकते हैं, वो अपने तरफ होने वाले डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट बात करते हैं।
जी, परिचर्चा में आप शामिल करते हैं बेहद जुझारू पर्यावरण एक्टिविस्ट के तौर पर जाने जाने वाले अरुण कृष्णमूर्ति जी को।
नमस्ते
अरुण जी, आप पूरे भारत में झीलों की सफाई का अभियान चला रहे हैं, कितनी कामयाबी मिल रही है आपको?
पहले इस मौके के लिए धन्यवाद और दिस इज अ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मी। पूरे भारत में 18 प्रदेशों में हमने पिछले 17 इयर्स में हमने 450 झीलों का रेस्टोरेशन काम किया था और 77 एफॉरेस्टेशन साइट्स पे हमने पेड़ पौधे लगाया। सो दिस इज ऑल थ्रू वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज, क्लोज टू 7.5 लाख वॉलंटियर्स इन 17 इयर्स अक्रॉस 18 स्टेट्स। वी हैव बीन एबल टू क्लीन रेस्टोर 450+ वाटर बॉडीज एंड सेटअप 77 एफॉरेस्टेशन।
जनरल नरवणे, भारत अब बहुत से सैनिक साजो सामान के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है, हम बहुत सा युद्धक सामान दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं, इसे कैसे देखते हैं आप?
अभी हमें इतने साल हो गए इंडिपेंडेंस के बाद और यह एक दुख की बात थी कि हम अभी भी काफी हमारा साजो सामान जो है वो बाहर से इम्पोर्ट कर रहे थे और ये नहीं कि ये बहुत आधुनिक चीजें थी, बहुत साधारण चीजें भी बाहर से आ रही थी, इसलिए बहुत जरूरी था कि हम जितने जल्दी आत्मनिर्भर बन सकते हैं वो हम बने। तो इसी दिशा में पिछले 10-11 साल के दौरान ये कोशिश रही है कि हम ना सिर्फ अपने डिफेंस के जो PSUs हैं बल्कि बाकी जो सिविल इंडस्ट्री है उनकी भी मदद लेके रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D के ऊपर जोर डाल के इस मंजिल पर पहुंचे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है जिसकी जरूरत फौज को है, और जब मैं फौज कहता हूं इसका मतलब सिर्फ आर्मी नहीं बल्कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो जितनी भी जरूरतें हैं ज्यादा से ज्यादा वो हम खुद ही अपने ही देश में उसकी भरपाई कर पाए।
अरुण जी, अगला सवाल आपसे लेते हैं कि आज हम देखते हैं कि थोड़ी सी भी बारिश होती नहीं है कि गांव और शहरों में जगह जगह पानी भर जाता है, इस समस्या से निजात के लिए क्या बड़े उपाय किए जाने चाहिए?
पर्यावरण के लिए काम करने के लिए एक संस्कृति थे पहले हिंदुस्तान में, लेकिन अभी ये अर्बनाइजेशन के माध्यम से क्या हो रहा है ना, वी डोंट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लैनेट, वी हैव फॉरगॉटन हाउ द प्लैनेट वर्क्स। आवर फोर फादर्स एंड फोर मदर्स लेफ्ट अस विद ब्यूटीफुल स्टेप वेल्स इन गुजरात, राजस्थान, वंडरफुल टेम्पल टैंक्स इन कर्नाटका, आंध्र, तमिलनाडु, लार्ज लेक्स अक्रॉस दिस कंट्री, लेकिन अभी गुड़गांव से चेन्नई तक, हैदराबाद से पटना तक हर झीलों पे हमने घर बनाया, हमने वहां पे फूलों बनाया, बस स्टैंड बनाया, और बिकॉज ऑफ encroachment in fresh water bodies we are getting flooded in all the cities. This is something which we'll have to rethink about. India is known for her cultural conservation practices. It is embedded. We are a civilization that worships tree, snake, frog, lake, river, pond, and we actually worship our own country. When being part of such a civilization, how can we actually forget our roots and pollute and abuse the environment? That is where there has to be a rethinking. Or is Independence Day, mera ek request hai ki we have to somehow, all of us have to take the planet seriously. If our love for the country is true, we have to respect lakes and ponds and rivers, our mountains, our deserts, our ocean, and when we do that, we will not face any of these environmental problems. Or India can be a leader, pioneer, forefront leader when it comes to nature conservation. And we have been in the past and we should be in the future too.
बिल्कुल सही कहा अरुण जी आपने, भारत को इस दिशा में अग्रणी होना चाहिए। एक और बड़ी चिंता की बात यह है कि पर्यावरण के हालात पूरी दुनिया में बिगड़ रहे हैं, केवल भारत में नहीं है, और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के बावजूद हालात में उतना सुधार नहीं हो रहा है जितना अभी तक हो जाना चाहिए था, इसकी क्या वजह लगती है आपको?
इंडिया वॉज डिफरेंट ऑलवेज, इंडिया हैज नेवर बीन सेल्फिश, इंडिया नेवर अटैक्ड अनदर कंट्री, इंडिया हैज ऑलवेज बीन गिविंग, हमने यहाँ से इतना दिया इस दुनिया के लिए, हमने पर्यावरण को कैसे बचाना वो भी हमने दिया इस दुनिया के लिए, योगा दिया हमने, बीइंग अ कंट्री सच एज इंडिया एंड बीइंग एन इंडियन means something else. It's a spiritual birth that we have been blessed with to be a part of this beautiful country. So being an Indian is a big responsibility, and that responsibility is what with which we should look for how we are going to lead this world. Honorable Prime Minister also has mentioned how India should be a leader when it comes to nature conservation, whether it's protecting the tiger elephant or dugong or great Indian bustard or Yamuna, Ganga, Kaveri, Krishna, Godavari, water to air to soil, trees to lakes to ponds. India should be a leader when it comes to nature conservation, and wo zimmedari is desh ki yuvon ke haath mein hai. As a young people, we should look at our past, how culturally our forefathers, foremothers taught us, and we should march ahead in that path towards a viksit Bharat, which is a sustainably developed India for a sustainably developed planet.
डॉक्टर इतालिया, देश के युवाओं को माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में आने के लिए शुरुआत से क्या तैयारी करनी चाहिए और करियर के नजरिए से ये विषय कितना फायदेमंद है?
माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट आप बीएससी में कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, मेडिकल लाइन में भी कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी भी है. पहले से आपको थोड़ा बायोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, और माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी जगह काम आता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है. बात तो यह है कि सुपरफिशियल नहीं होना चाहिए आपको, ये सब्जेक्ट के अंदर जाके जितना डीप हो सके उतना डीप जाना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए. अगर जो बेसिक नॉलेज होएगा तो आप अच्छा काम कर पाओ, तो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट थिंग.
दीपा जी, ये जानना भी बहुत जरूरी है कि खेल भारत के विकास में कितनी अहम भूमिका निभा रहे हैं.
देखिए, खेल का अर्थ ही स्वास्थ्य है. खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि खेलेगा भारत तो खिलेगा भारत. फिट इंडिया मूवमेंट इतना बड़ा मूवमेंट चलाया गया है, योगा को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस तक ले जाया गया है. अभी वैसे भी खेलों का माहौल चल रहा है, ओलंपिक खत्म हुए हैं, हम पैरालंपिक की तैयारी कर रहे हैं, और हम अभी वर्ल्ड कप भी जीते हैं. चाहे क्रिकेट की बात करें, ओलंपिक खेलों की बात करें, तो कहने का अर्थ यह है कि खेल हमें जोड़ता है, खेल पूरे भारत में एकता लाता है. क्योंकि जब भी कोई ऐसा बड़ा मेडल आता है या बड़ी जीत होती है, तो पूरा भारत सड़क में उतर कर जश्न मनाता है. उसमें खेल की जीत एक ऐसी जीत है जिसके अंदर कोई जाति नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, बस जीत का जश्न रहता है. तो खेल बहुत बड़ा माध्यम है हमें आपस में एक दूसरे से जोड़ने का, सोशली इंटीग्रेट करने का, हमारी हेल्थ देने का, एक कैरेक्टर बिल्डिंग का, वैल्यू एडिशन का. क्योंकि जब आप खेलते हैं तो आप किसी रूल्स के बाध्य होते हैं, आप डिसिप्लिन रखते हैं, आप एक दिनचर्या में एक अपना समय बनाते हैं. तो खेल आपको डिसिप्लिन होने का, टाइम मैनेजमेंट का भी एक आपको वैल्यू देता है. और साथ ही जब आप हारते हैं, हार को कैसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में एक्सेप्ट करना है. क्योंकि क्या है, कंपटीशन का इतना ज्यादा आजकल चलन हो गया है, चाहे पढ़ाई में कहिए, चाहे कारोबार में कहिए, चाहे वर्क प्लेस पे कहिए, लोग डिफीट या कोई एक बुरा वक्त को एक्सेप्ट ही करना भूल गए हैं. तो मुझे लगता है खेल वो ताकत, अंदरूनी हिम्मत देता है आपको. तो खेल से तो बहुत अनेकों फायदे हैं, बहुत ज्यादा फायदे हैं.
जनरल, भारतीय सेना न सिर्फ अपने देश की रखवाली में हर तरह से सक्षम है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में भी अपनी धाक अच्छी तरह जमा रही है. क्या कहना चाहेंगे?
एक रिस्पॉन्सिबल देश होने के नाते कहीं पर भी दुनिया भर में अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है जहां की शांति सेना यूएन के झंडे के नीचे तैनात करने की जरूरत पड़े, तो मैं समझता हूं कि भारत को भी जो मिशन है इसमें हिस्सा लेना बहुत जरूरी है. ना सिर्फ इन इलाकों में, क्षेत्रों में जहां पर तनाव या युद्ध चल रहा हो वहां पर सुख चैन और अमन लाने के लिए, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए.
जनरल नरवणे, देश के युवाओं को फौज में भर्ती होने के लिए प्रेरित करने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन्हें?
पहले इस बात तो मैं ये कहूंगा कि जितने भी युवा हैं, लड़के लड़कियां दोनों, जो आपका दिल कहता है उस ओर के ओर बढ़ो. चाहे फौज में जाना हो, चाहे डॉक्टर बनना हो, चाहे इंजीनियर बनना हो, वही करो जो आप करना चाहते हो. क्योंकि कोई समाज का दबाव है या पेरेंट्स का दबाव है, और इफ यू फॉलो योर ड्रीम्स, फिर जहां पर भी आप जाओगे वहां आप सक्षम रहोगे. और उसी तरह फौज में भी अगर आना है तो इस तैयारी के साथ आना है कि एक मुश्किल काम है, और इसमें आम जो जॉब होते हैं उससे कई गुना मेहनत करने पड़ती है और कई हार्डशिप भी सहन करने पड़ते हैं. तो ये मानसिक तैयारी भी होनी चाहिए अगर फौज में आना है.
डॉक्टर इतालिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय जवान जय किसान के नारे को आगे बढ़ाया, उसमें जय विज्ञान और जय अनुसंधान भी जोड़ा, ये कितना जरूरी है देश की उन्नति के लिए?
बहुत बहुत जरूरी है। हम ऐसा कहते हैं कि हम आर्थिक स्थिति से बहुत आगे हैं, हम ऐसा कहते हैं कि दुनिया की बड़ी आर्थिक व्यवस्था में जा रहे हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कि हम लोग जो पिछड़े वर्ग है, हमारे आदिवासी लोग हैं, उनके लिए भी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, विच इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एंड वेरी वेरी मीनिंगफुल ऑल्सो, इट इज रिक्वायर्ड एब्सोल्युटली एट द मोमेंट।
डॉक्टर इटालिया, हमारे श्रोता ये जानना जरूर चाहेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में भारत कितनी तरक्की कर रहा है आजकल।
भारत माइक्रोबायोलॉजी इज अ वास्ट सब्जेक्ट, वो एग्रीकल्चर में भी आता है, मेडिकल में भी आता है, इंडस्ट्री में भी आता है, और जहां आप काम करते हैं उसके डीप में अगर जाएंगे तो सभी जगह आपको मिलेगा कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, वायरोलॉजी भी माइक्रोबायोलॉजी ही है, तो ये सब काम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और इंडिया इज एट पार विद द वर्ल्ड।
अरुण जी, क्या आपको लगता है कि पर्यावरण में सुधार के लिए जन भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका है? सरकारें तो अपने स्तर पर काम कर ही रही हैं, जन भागीदारी बढ़ाए बिना बात नहीं बनेगी?
बिना जनशक्ति कुछ नहीं कर सकते हम, और भारत ऐसे जैसे एक एग्जांपल है। डेमोक्रेसी हैज डन वंडर्स इन दिस कंट्री, आवर फ्रीडम फाइटिंग मिशन वॉज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन पब्लिक वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, और चिपको मूवमेंट की एग्जांपल और इतने सारे एग्जांपल्स इस देश में है कि कैसे पर्यावरण बचाने के लिए, वो पेड़ पौधे समुन्द्र नदी ऐसे सब पर्यावरण बचाने के लिए लोग इतने सारे इंटरेस्ट से एक कदम उठा के आए थे। इंडिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर पीपुल्स पावर फॉर रिजल्ट ओरियंटेड पॉजिटिव वर्क, एंड विदाउट पीपुल्स पावर एंड पार्टिसिपेशन नथिंग इज पॉसिबल। द स्वच्छ भारत मिशन इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ हैव एवरीबडी वॉन्ट्स टू सी अ क्लीन इंडिया, नो Nobody here wants to see, whether it's from Mount Abu to Kodaikanal, Shillong to somewhere near Chandigarh, all of us want to see a clean India, and that is why projects like the Swachh Bharat Mission and everything is a grand success. And with the young generation, hum usse continue karna chahenge, kyunki without all of us participating, developing a beautiful India, a responsible India is not possible, and without pointing fingers at each other, we all should come together in the name of our country to volunteer for India and her environment.
जनरल नरवणे, इधर भारतीयता के बोध में काफी बढ़ोतरी हुई है, भारतीयों का आत्मविश्वास और मनोबल काफी बढ़ा है, इसमें सेना की क्या भूमिका देखते हैं आप, जो सैनिक सर्व कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं और जो रिटायरमेंट लेकर वापस समाज में आते हैं, उनकी भूमिका के बारे में कुछ बताइए।
मैं ये याद दिलाना चाहूंगा कि फौजी कोई बाहर से नहीं आया, हम भारत की फौज है, हम समाज से ही आते हैं और सर्विस करने के बाद समाज में ही वापस जाते हैं, हम भारत की सेना है, भारतीय सेना भारत की सेना।
डॉक्टर इतालिया, विज्ञान की पढ़ाई हिंदी समेत दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं में कराया जाना कितना महत्वपूर्ण है और इस दिशा में आपके सुझाव क्या हैं?
इट इज वेरी इम्पोर्टेंट। सपोज कि हम गुजरात में हैं तो हम लोग बोलते हैं कि हम गुजराती लिए इसीलिए हमारा इंग्लिश कच्चा है, हिंदी कच्चा है, इतना अच्छा नहीं है। फिर भी अगर आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो तो लैंग्वेज बहुत फर्क नहीं पड़ता है, हर एक लैंग्वेज के अंदर उसका ज्ञान मिलना चाहिए, क्योंकि वन कैन वेरी वेल एडॉप्ट द अंडरस्टैंडिंग इन देयर ओन लैंग्वेज रादर देन एनी फॉरेन लैंग्वेज और एनी अदर लैंग्वेज विच इज नॉट बींग स्पोकन इन द हाउस, सो इट इज वेरी इम्पोर्टेंट।
अरुण जी, प्रधानमंत्री जी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान को लेकर आप क्या कहेंगे?
ये बहुत महत्वपूर्ण एक और पर्यावरण के लिए आइडिया माननीय प्रधानमंत्री जी से आए थे, क्योंकि हर इंडिपेंडेंस डे वो ऐसे जैसे एक चैलेंज देते हम सबको, स्वच्छ भारत मिशन, जल शक्ति अभियान, एंड नाउ माँ के नाम एक पेड़ और नीम। Neem is an important tree. We have adopted the neem tree after the Honorable Prime Minister's request and advice, where we are planting at least close to 30,000 neem trees from Nagpur to Chennai to Bangalore to Indore to Surat to Vadodara, in Ahmedabad, in Gurgaon, in Varanasi, Hardoi, across the country. Greening India is very important. We have already spoken about Clean India, Swachh Bharat Mission, and that is taken off beautifully thanks to the Prime Minister. Now he is actually spoken about Green India. So clean India, green India is the future of the world, and I'm very happy that the highest office in this country is taking such interest in natural resources, protecting it, animals, trees, lake, pond and more.
डॉक्टर इतालिया, प्राचीन भारतीय सनातन परंपराओं को विज्ञान के नजरिए से देखा जाना चाहिए, शुरुआत से ही बच्चों को इस बारे में पढ़ाए जाने की जरूरत है, क्या आपको लगता है? और इस दिशा में जन जागरण बहुत जरूरी है, क्या कहना है आपका?
भारत ने हमेशा मेडिसिन के लाइन में दुनिया को लीड किया है, हमने बहुत सारे रास्ते बताए हैं, अभी कोविड के अंदर भी हमने वैक्सीन बना के दुनिया को दिया और उससे बहुत फायदा हुआ, तो ये सब चीजें भारत के अंदर हमारे वहाँ पुराने जमाने से आयुर्वेदिक ड्रग के हिसाब से भी बहुत उपयोगी दवाएं बन रही थी और उसके बहुत लोगों को फायदा हुआ था। ये सब चीज हमें हमारे बच्चे को बताना चाहिए, टेक्स्ट बुक में उसका इंक्लूड करना चाहिए और भविष्य के लिए भी उनको तैयार करना चाहिए कि जो भारत की नीति है सबको मदद करने की, तो ये नीति के आधार पे ही वो चले और अच्छा काम करके देश को आगे बढ़ाए।
डॉक्टर साहब, एक बात और है कि विज्ञान के क्षेत्र में पेटेंट की चुनौती कितनी बड़ी है, इससे निपटने के लिए क्या किया जाना चाहिए?
मोस्टली जो पेटेंट आता है वो प्रोफेशनल कैरियर के लिए आता है और जो एकेडमिक कैरियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके पास कितना पेटेंट है उसके ऊपर से आपका सीवी अच्छा रहता है, तो ये सब जरूरी है, लेकिन जितना हो सके इतना लोगों को उपयोगी बने ऐसा कुछ पेटेंट होगा और वो जो फ्री बोलेगा तो बहुत सारे लोगों को उसको उपयोग में लेने के लिए इजाजत है, तो वो बहुत अच्छा काम है और उसके लिए हमें कुछ करना भी चाहिए। आपको उसके लिए पेटेंट लेना ही चाहिए, आप कुछ अच्छा कर रहे हैं।
दीपा जी, खेलो इंडिया मुहिम को लेकर आप क्या सोचती हैं?
जी, मैं तो खेलों के वर्ग से जुड़ी हूँ। जिस हिसाब से दिव्यांग खिलाड़ियों को पॉलिसी में इंक्लूड किया गया है, मेन स्ट्रीम में लिया गया है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स अब रखे जा रहे हैं और समान तरह की बिल्कुल बराबर टारगेट ओलंपिक्स पोडियम स्कीम के तहत, चाहे आप अवार्ड के तहत कहें, चाहे आप जॉब अपॉर्चुनिटी के तहत कहें, गवर्नमेंट पॉलिसीज के तहत आपको जैसा मेडल आप जीत रहे हैं, चाहे वो ओलंपिक का हो पैरालंपिक का हो, सम्मान बराबर का है। कोई भी टीम में कोई भी जीतता है, आदरणीय प्रधानमंत्री स्वयं ओलंपिक के मेडल के लिए भी और पैरालंपिक के मेडल के लिए भी आपको सराहते हैं, बात करते हैं, टीम का स्वागत करते हैं। तो कई मायनों में मैं देख रही हूँ कि सोच बहुत हद तक बदल रही है। काम देखिए निरंतर होना है, प्रगति का मतलब है वर्क इन प्रोग्रेस। मैं ये नहीं कहती कि सब कुछ बिल्कुल पॉजिटिव हो गया है, लेकिन लगातार प्रोग्रेस तो हमें हर क्षेत्र में करनी ही है।
अरुण जी, प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में एक बार आपका जिक्र किया था, तब कितनी प्रेरणा आपको मिली थी इससे?
प्राइमरीली बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, क्योंकि इतने बड़े ऑफिस से हमारे जैसे एक इंसान की वॉलंटियरिंग एक्टिविटी को वो रिकग्नाइज कर रहे हैं, अक्नॉलेज कर रहे हैं। इट इज सच अ बिग डील एंड आई फेल्ट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नॉट टुक माई नेम बट टुक द नेम्स ऑफ ऑल दोज वॉलंटियर्स हु वर्क फॉर इंडिया एंड हर एनवायरमेंट। सो इट्स अ ह्यूज एनकरेजमेंट, इट मेक्स अस वॉन्ट टू डू मोर फॉर आर एनवायरमेंट। He is only encouraging people like us to do more, so we are thankful to the Honorable Prime Minister.
अरुण जी, आपने मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की है, आपकी मुहिम में ये कितनी मददगार साबित हो रही है?
मेरे को ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग पे बहुत इंटरेस्ट है, इसी के लिए मैंने मास कम्युनिकेशन कोर्स किया था और भारत की कोने कोने गांवों जाके उधर लोगों का ये कहानियां, कैसे वो वाटर कंजर्वेशन की कहानियां, स्टेपवेल्स की कहानियां, ये पूरा डॉक्यूमेंट किया था हमने। वाइल डूइंग दैट वी लर्न सो मच ऑफ आर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ वाटर कंजर्वेशन और अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग ऑफ ग्रीन क्लीन फ्यूचर इंडिया। सो वो ये कम्युनिकेशन माध्यम से ही होंगे, आकाशवाणी दूरदर्शन फॉर एग्जाम्पल। विदाउट आकाशवाणी एंड दूरदर्शन इंडिया कुड नॉट हैव प्रोग्रेस सो मच, वेदर इट्स द फार्मर्स प्रोग्राम और मोर दैट दिस प्लेटफॉर्म हैज डन। सो कम्युनिकेशन इज द की टू कंजर्वेशन इज माई ओपिनियन।
जनरल नरवणे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर घर तिरंगा मुहिम को लेकर आप क्या सोचते हैं?
हमें हर नागरिक के अंदर एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म पैदा करने की जरूरत है, जो कि मैं समझता हूँ इतनी हम में नहीं है। और जब तक ये भावना हम सब में नहीं होंगे, ये देश प्रेम की भावना नहीं होगी, तब तक हम इतनी तरक्की नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर घर तिरंगा, ये सिर्फ नारा ही नहीं लेकिन करना भी चाहिए, ताकि हम सब, चाहे हम कहीं पर भी हो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, किसी भी प्रांत के हो, किसी भी रिलीजन के हो, हम सबको लगना चाहिए कि हम अखंड भारत का हिस्सा है।
डॉक्टर इतालिया, प्रधानमंत्री के हर घर तिरंगा अभियान को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप?
दिस पॉलिटिकल विल ऑलवेज प्ले अ मेजर रोल इन द लाइफ ऑफ पीपल। तो उन्होंने जो ये घर घर तिरंगा लहराने की बात की है, उसे एक पेट्रियोटिक फीलिंग आपके दिल में आती है और आपको भी ऐसा लगता है कि आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द नेशन वेर आई एम प्लेइंग माई ओन रोल। एज फार एज सिकल सेल इज कंसर्न, आई कैन से द सक्सेस ऑफ द होल सिकल सेल प्रोग्राम इज जस्ट बिकॉज ऑफ द पोलिटिकल विल, वेरी स्ट्रांग पोलिटिकल विल ऑफ अवर प्राइम मिनिस्टर हू हैज ब्रॉट दिस प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। नो कंट्री इज डूइंग इट एंड रियली इट इज वंडरफुल।
अरुण जी, हर घर तिरंगा अभियान पर आपकी क्या टिप्पणी है?
ओलंपिक्स के समय और हमारे जवानों ये झंडे लेके जाएंगे, हम ऐसे कॉमन सिटीजन को वो मौका कभी नहीं मिलेंगे। एंड इट इज सच अ प्राइड दैट हर घर तिरंगा वॉज ब्रॉट इन, एंड इट्स अ सिंपल आइडिया। ये रूल नहीं है, ये लॉ नहीं है, ये सिंपल आइडिया है पूरे देश को यूनाइट करने के लिए। एंड अदर देन द फ्लैग एंड द कंट्री एंड द नेशनल एंथम, वॉट कैन यूनाइट अस टूगेदर? सो हैविंग फ्लैग एट एवरी होम इज सच अ प्राउड मोमेंट, एंड वी आर सिंसियर followers of it, like portraying our flag out there, celebrating this country has no limits, and har ghar tiranga har din hona hi hai.
General Narvane, bharat ke logon aur tamam deshon mein reh rahe bharatvanshiyon se swatantrata divas par aap kya kehna chahenge?
पहले बात तो सबको मेरे तरफ से और पूरे देश के तरफ से शुभकामनाएं कि वो जहां पर भी हो खुशकिस्मत रहे और भी तरक्की करे, लेकिन जहां पर भी हो अपने रूट्स को, अपने जड़ों को नहीं भूलना चाहिए।
डॉक्टर इतालिया, स्वतंत्रता दिवस पर आप देश के लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे?
इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं सभी से इस नेक मिशन में शामिल होने का आग्रह करता हूं। आइए हम भारत को एक ऐसा देश बनाने का संकल्प लें जहां पर बच्चा स्वस्थ पैदा हो और रोकथाम योग्य बीमारियों के बोझ से मुक्त हो। साथ मिलकर हम इस दृष्टिकोण को प्राप्त कर सकते हैं और सभी के लिए एक उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं।
स्वतंत्रता दिवस पर आप देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी उनसे दीपा जी?
सर्वप्रथम तो मैं सभी को नतमस्तक होने के लिए कहूंगी, उन लोगों के लिए जिनकी कुर्बानी से हमें ये आजादी नसीब हुई है। एक नमस्ते, एक नतमस्तक होना हमारे सैनिकों के लिए भी, जो लगातार तूफान, आंधी, सर्दी, गर्मी में बॉर्डर पे हमारे देश की रक्षा करते हैं, परिवार से दूर रहते हैं और तिरंगे को हमेशा ऊपर लहरा कर रखते हैं। तो बहुत जरूरी है आजादी के दिवस के दिन एक ग्रेटिट्यूड की भावना को लेकर आना, उन सभी को सलाम करना, इतने शहीदों के परिवारों को धन्यवाद देना कि आज जो हमें आजादी मिली है वो आसानी से नहीं मिली है। आज जो हम एक स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम कारोबार कर रहे हैं, ये इसमें बहुत सारे लोगों का बलिदान है। तो पहला तो उनकी बलिदान को याद करें और दूसरा एक प्रण लें आज के दिन कि जो तिरंगा है उसके लिए हम अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। आप जरूरी नहीं है कि खिलाड़ी हो या सैनिक हो तभी आप तिरंगा आगे लेके जाएं, या आप स्वतंत्रता सेनानी है तभी आप तिरंगा को हाथ में लें। अब प्रधानमंत्री जी कहते हैं हर घर तिरंगा, क्योंकि जब तक आप तिरंगे के सम्मान के लिए नहीं खड़े होंगे तो अपने देश प्रेम की भावना कैसे जगाएंगे। तो ये वो दिन है जिस दिन आप अपने अंदर देश प्रेम की भावना को उजागर करिए, अपने तिरंगे को सलाम करिए, लहराइए और साथ में एक प्रण लीजिए कि मैं किसी न किसी रूप में, छोटा बड़ा, अपने विकसित भारत की ओर अपना योगदान दूंगा या दूंगी। आज का युवा क्या है, पढ़ लिख गया है, सोशल मीडिया में अवेयरनेस है, तो सब बात करते हैं अपने राइट्स की, ये मेरा हक है, ये मेरा हक है। अपनी ड्यूटीज को भी आप पढ़िए, एज सिंपल एज चाय पी के अगर आप जो पत्तल है या जो ग्लास है उसको कचरे के डब्बे में आप फेंक सकते हैं तो भी आप अपने भारत की सेवा कर रहे हैं।
अरुण जी, आप युवा हैं, स्वतंत्रता दिवस पर आप युवाओं और देश के सभी लोगों से क्या कहना चाहते हैं?
वी हैव टू सेलिब्रेट इंडिया फॉर सो मेनी रीजन्स। इस देश को ऐसे सेलिब्रेट करना है, गंगा के लिए सेलिब्रेट करना है, कृष्णा के लिए सेलिब्रेट करना है, कावेरी, ताम्रबरणी, पेरियार, नर्मदा, साबरमती, ब्रह्मपुत्र, सतलज, रवि, ब्यास, चेनाब, ऐसे जैसे नदियों के लिए वी हैव टू सेलिब्रेट दिस कंट्री। हाथी के लिए, राइनोसरस के लिए, टाइगर के लिए, लायन के लिए सेलिब्रेट करना है, ग्रेट हॉर्नबिल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हूल ऑफ गिबन, सी काउ, सी टर्टल, ऐसे जैसे इतने सारे जानवरों एक देश में, भारत में मिलेंगे हमको। पेड़ो, द नंबर ऑफ हर्ब्स दैट वी हैव, द ब्यूटिफुल फ्लावर्स दैट वी हैव, स्नो कैप माउंटेन, द डेसर्ट, द ब्यूटिफुल माउंटेन रेंजेस ऑफ द विंध्या, द सह्याद्री, द सतपुरा, द वेस्टर्न घाट्स, द ईस्टर्न घाट्स, इंडिया इज मैजिक। एंड भारत एक देश नहीं है, ये एक इमोशनल फीलिंग है, एक स्पिरिचुअल फीलिंग है, एंड वी हैव टू सेलिब्रेट इंडिया टू द ट्रू सेंस। और वॉलंटियरिंग के माध्यम से हम इस देश को सेलिब्रेट करना है। वी हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल एंड वी हैव टू वॉलंटियर फॉर दिस कंट्री बिकॉज इट्स हार्ड फॉट फ्रीडम दैट हैज बीन गिवन टू अस एंड सच ए रिच डाइवर्सिटी एंड कल्चर दैट वी हैव टू कीप सेलिब्रेटिंग। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।
आकाशवाणी पर विशेष परिचर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद।
अभी आप सुन रहे थे 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आकाशवाणी समाचार की एक विशेष परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे, पद्मश्री और माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉ यसडी इटालिया, पद्मश्री और खेल रत्न डॉ दीपा मलिक और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अरुण कृष्णमूर्ति। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार रवि पाराशर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।